मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 10 सितंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग नजरिया इस विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस नजरिए की बात कर रहा हूं उसमें दोनों बातें शामिल हैं। पहला वह जो हम देख रहे हैं, हमारी नज़रें जिन बातों को देख रही हैं, जिस परिस्थितियों को देख रही हैं, और दूसरा कि हमारा दिमाग उन परिस्थितियों को, उन दृश्यों को जिस तरीके से समझ रहा है, यानी कि जो नज़रिया है वह मूलतः हमारी दृष्टि और हमारा बोध, या यूं कह लीजिए हमारे विचार, इन दोनों से मिलकर बनता है नजरिया। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आप सबसे एक छोटा सा वायदा किया था, और वायदा यह था कि मैं आपको एक फिल्म के माध्यम से इस नजरिए के जो एक्शन होते हैं, आप यूं कह लीजिए कि इस नजरिए का जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है और उस प्रभाव के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, हम उसी के अनुकूल जो एक्शन करने लगते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है द वेटिंग रूम। यदि आप चाहें तो आप ये फिल्म देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर मेरी बात को सुनने के बाद अगर आप फिल्म देख सकेंगे तो शायद मेरी बात को और भी अधिक गहराई के साथ समझ सकें। द वेटिंग रूम फिल्म का नाम है, जो 10 साल पुरानी है, और शायद इसकी जो एक्ट्रेस हैं राधिका आप्टे जी, उनके नाम से आपको फिल्म देखने की एक जिज्ञासा भी पैदा हो जाए, और वो इसलिए क्योंकि राधिका आप्टे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ही मंजी हुई एक्ट्रेस है। मैंने महसूस किया है कि जिस रोल में भी वह होती हैं उस रोल में वो जान डाल देती हैं, इसलिए यहां मैं राधिका आप्टे का नाम ले रहा हूं। और सच पूछिए तो हम लोगों ने जो ये फिल्म देखी, इनफैक्ट इस फिल्म के नाम से फिल्म नहीं देखी है बल्कि राधिका आप्टे जी के नाम से ही इस फिल्म को देखा है। अब आपको मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं, कोई बात नहीं, अगर आप फिल्म भी देखना चाहेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि अरे फिल्म की कहानी तो हमें पता लग ही गई है तो फिल्म का मजा निकल गया। आप इसे मजे की दृष्टि से मत देखिए, आप इसे समझने की दृष्टि से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस फिल्म को अपनी आंखों से पढ़िए। आप आंखों से तो आप सभी को बातें पढ़ते हैं, लेकिन उस वहां आप अक्षरों को पढ़ते हैं, यहां आप दृश्यों को पढ़िए, राइट। कुल मिलाकर के होता यह है फ्रेंड्स कि एक बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है, नाम है वेटिंग रूम तो रेलवे स्टेशन होगा, बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है। वहां रात में ट्रेन आती है तो जिनको भी उस ट्रेन से सफर करना होता है वो शाम को ही वहां पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा स्थान है, कस्बा है, आप कह लीजिए, आने जाने के साधन नहीं मिलते हैं, है ना, बरसात का मौसम है और वो ट्रेन अक्सर लेट ही आती है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि रात ज्यादा होने से पहले पहले वो स्टेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले इस स्टेशन पर आती हैं राधिका आप्टे, वो स्टेशन पर आ गई हैं और बकायदे वेटिंग रूम में चली गई हैं बैठने के लिए, क्योंकि ट्रेन अभी लेट है, जैसा कि वो हमेशा होती रहती है। वहां उन्हें एक खबर पढ़ने को मिलती है, एक खबर पढ़ने को ये मिलती है कि इस एरिया में एक किलर है, यानी कि हत्यारा है, जो सीरीज में हत्याएं कर रहा है, लगातार हत्याएं करते चला जा रहा है। जैसे ही वो इस खबर को पढ़ती हैं, अब आप देखिए कि बाहर से उन्हें एक खबर मिल गई है कि इस एरिया में एक हत्यारा घूम रहा है। रात का वक्त है, वो वेटिंग रूम में है और वो अकेली हैं और मौसम भी बरसात का है, तो है ना, इन सब चीजों को आप थोड़ा सा अनुभव कीजिएगा। वहां एक टीवी लगा हुआ है छोटा सा, उस पर भी यही खबर आती है कि एक सीरियल किलर है और वो इस तरह से घूम घूम करके हत्याएं करता है, और फिर उसमें वो ये भी बताते हैं कि वो किस तरह से लोगों के पास जाता है, उन्हें खाने के लिए कुछ ऑफर करता है, और जब वो लोग खा लेते हैं तो लोग फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर वो उनकी हत्या कर देता है। इस तरह की जो खबर है वो टीवी पर आती रहती है। अब ये खबर राधिका आप्टे सुनती हैं, है ना, मैंने उनका नाम ओरिजिनल नाम फिल्म में क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलिए मैं राधिका आप्टे ही कह रहा हूं, सुनती हैं। अब आप देखिए कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति अब उनका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। पहले वो आई हैं और बिल्कुल खुशनुमा हैं कि ठीक है बैठेंगे चलेंगे वेट करेंगे, लेकिन एकदम से वो सहम जाती हैं और अब वो डरी डरी रहने लगी हैं। थोड़ी देर के बाद ही एक नौजवान लड़का आता है, राइट। अब जैसे ही उसको वेटिंग रूम में आते हुए देखते, उसको भी ट्रेन से जाना है, वेटिंग रूम में आते हुए देखती हैं तो उनको लगता है कि कहीं ये वही सीरियल किलर तो नहीं है। आता है, वो बैठता है, वो डर जाती हैं, वो किनारे सरक जाती हैं, फिर वो जो लड़का है वो कुछ लेकर के आया था, देख रहा है रात का वक्त हो गया है और स्टेशन छोटा सा है, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, तो बकायदे राधिका आप्टे को ऑफर करता है खाने के लिए, और ज्यादा डर जाती है क्योंकि इनके दिमाग में क्या है कि जो सीरियल किलर है वो खाने के लिए कुछ देता है, वो साफ साफ मना कर देती है। लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो अपना खाना खाने लगता है। इसके बाद फिर लड़का पूछता है कि आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बताती है। फिर लड़का पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं, तो वो बता देती है कि मैं यहाँ पुणे जा रही हूँ या कोल्हापुर जा रही हूँ, कुछ इस तरह से बताती हैं। लेकिन बताते समय वो पूरा सतर्क रहती है कि जो कीलर है वो इससे संबंध बढ़ाना चाह रहा है, इसके बारे में सारी जानकारियां लेना चाह रहा है और फिर इसकी हत्या कर देगा। चलिए, इसके बाद वो लड़का निकल करके बाहर जाता है, स्टेशन पर थोड़ा सा टहलता है, देखता है, तो वापस लौटता है, तो फिर वो लड़की से पूछता है राधिका आप्टे से कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अब ये और डर जाती है, इसको कैसे पता कि मैंने झूठ बोला। तो बताता है कि मैं जब बाहर गया था तो वहां एक लिस्ट लगी रहती है ना, ट्रेन में रिजर्वेशन की लिस्ट, तो मैंने वहां देखा तो आपने अपना नाम भी गलत बताया और आपने ये भी गलत बताया कि आप कहाँ जा रही हैं। आप जा पुणे रही हैं और बता कोल्हापुर रही हैं, या कोल्हापुर जा रही हैं बता पुणे रही हैं। अब ये और डर जाती है। अब देखते रहिए, एक्शन को देखते रहिए, और यही उस फिल्म की खूबसूरती भी, अदरवाइज बहुत उबाऊ है। अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पर जुड़ करके इस फिल्म को नहीं देखेंगे तो ये फिल्म बहुत उबाऊ लगेगी, आप थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, क्योंकि फिल्म में अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है, प्रकाश नहीं है और इस तरह का वातावरण बनाया गया है, तो स्वाभाविक है कि ऐसी चीजें पसंद नहीं आती हैं ज्यादातर। लेकिन चूंकि मुझे तो जीवन को समझना था, देखना था, जानना था, तो मैंने ये फिल्म ध्यान से देखी। इसके बाद अब एक तीसरा जोड़ा आता है, ये हस्बैंड वाइफ है। इन दोनों को बैठे हुए देखते हैं, वो अखबार उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं, लेकर के आए थे अखबार पढ़ना शुरू करते हैं, उनमें भी आपस में बातचीत चल रही है और उस अखबार में वो ये घटना पढ़ते हैं कि एक लड़का और एक लड़की गांव से भाग गए हैं। अब जब वो ये खबर पढ़ते हैं तब आप बताइए कि उनके दिमाग में अब क्या आएगा, क्योंकि उनके सामने एक नौजवान लड़का और लड़की बैठे हुए हैं, राइट, और ये लोग बीच बीच में आपस में बातें भी कर रहे हैं और वो एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं। अब क्या सोचेंगे? तो दोस्तों, फिर जो हस्बैंड वाइफ है ये आपस में बात करते हैं कि देखो यही वो भागे हुए लड़के लड़कियां हैं। इसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि ये दोनों पुणे जाने वाले हैं और उस खबर में भी ये बात रहती है कि ये पुणे जा और भाग करके वो पुणे चले गए हैं, तो कहते देखो ये पुणे जाने वाले हैं, ये वही लोग हैं। दोस्तों, उस फिल्म में बिल्कुल एक दूसरे के प्रति भयानक रूप से अविश्वास का वातावरण बन जाता है। और मजेदार बात है, उस समय जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी उनको खबरें मिल रही हैं, वो सारी खबरें उनको सच मालूम पड़ रही हैं। लग रहा है कि बिल्कुल यही है, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। बातचीत में वो बताते हैं कि देखो मैं ऐसा कह रहा था ना, हाँ तुम तो ऐसा कह रहे थे, बिल्कुल सच निकल रहा है, मैं कभी झूठ बोलता हूं क्या, तुमको भी ऐसा लग रहा है ना। तो उनकी पत्नी बोलती है, हाँ मुझे भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, देखो कैसे आपस में बात कर रहे हैं, देखो ये जो दूर दूर बैठे हुए हैं ना, एक दूसरे से जो बात नहीं कर रहे या बहस कर रहे हैं, ये केवल हम लोगों को धोखे में डालने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से बातें चलती रहती हैं। फिर वो जो हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं वो पिस्तौल तक निकाल लेते हैं, उनके पास एक पिस्टल रहती है, उस लड़के को बंदी बना लेते हैं ये मान करके कि यही सीरियल किलर है। और स्थिति होती है, फिर एक व्यक्ति मारा जाता है, उस पता लगता है कि जो व्यक्ति मारा गया है वही सीरियल किलर था, वो बाद में चलिए रहस्य होता है, स्पष्ट होता है। और फिर ये आपस में तीनों मिलते हैं और कहते हैं कि देखो हमने इतना वक्त एक दूसरे के प्रति कितना जबरदस्त अविश्वास के साथ बिताया है, हम सब कितने अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को अपना कार्ड देते हैं, मिलने का वायदा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इतने में ट्रेन आती है और चले जाते हैं। दोस्तों, इसमें यही खूबसूरती है कि कैसे एक छोटी सी घटना या छोटा सा समाचार इन तीनों के जिंदगी को नरक बना देता है। वो जो रात का समय इनका बीतता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये नरक में समय बिता रहे हैं, जबकि बकायदे ये स्वर्ग में समय बिता सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा नजरिया, और इसका दूसरा पार्ट है नजरिए के अनुकूल हमारा व्यवहार। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात पसंद आई होगी, और पसंद आए या ना आए वो तो चलिए बात अलग है। मुझे लगता है कि हम सबको भी समय समय पर बहुत सतर्क होकर के अपने विचारों के बारे में ये निरीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि हम जीवन के सत्य को जान सकें, तात्कालिक सत्य को तो कम से कम जान सकें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, अब आप सबसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।